इप्सिता अपनी डाइनिंग टेबल पर रखी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी, पर उसकी निगाह बार बार अभिमन्यु पर जा रही थी। अभिमन्यु ने ये नोटिस कर लिया, मगर उसने इप्सिता से कुछ नहीं पूछा। जब सभी नौकरों ने दोनों की थाली में खाना परोसकर वहां से जाना समाप्त कर दिया, तब अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, क्या बात है इप्सिता, आप बार बार हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं तो हम आपको कहाँ देख रहे हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, ओ अच्छा, हमें लगा शायद ये कपड़े हमें सूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप हमें ऐसे देख रही हैं। नहीं नहीं, ये आप पर बहुत सूट कर रहे हैं, इप्सिता ने उसकी बात सुनते ही तुरंत जवाब दिया। इतना कहकर इप्सिता अचानक चुप हो गई। अभिमन्यु ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, सीरियसली? हाँ, वो एक्चुअली हमने आपको पहले जब भी देखा है तो सिर्फ कोट पैंट और शेरवानी में ही देखा है, और आज आपको इन नॉर्मल कपड़ों में देखकर हमें थोड़ा अटपटा लगा, ऐसा लगा ही नहीं जैसे हम। इप्सिता अपनी बात अधूरी छोड़ गई। आपको लगा ही नहीं जैसे हम कोई कुंवर हों, है ना? अभिमन्यु ने उसकी बात पूरी की। इप्सिता हैरानी से अभिमन्यु की ओर देख रही थी। उसने धीरे से नाम में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, कुंवर तो हम सिर्फ नाम के हैं, वैसे तो हम भी आप सबकी तरह ही एक सामान्य इंसान हैं। हमें तो समझ में नहीं आता लोग हमें कुंवर समझकर इतना अलग तरह से क्यों ट्रीट करने लगते हैं। हम भी इंसान हैं यार, हमें भी गर्मी लगती है, नॉर्मल कपड़े पहनने का मन करता है। नहीं, लोग आपको अलग तरह से ट्रीट नहीं करते, बल्कि वो आपकी इज्जत करते हैं, इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा। इतना कहकर इप्सिता चुप हो गई। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे और कुछ देर बाद दोनों उठ खड़े हुए। इप्सिता ने अभिमन्यु से कहा, आज ही आप यात्रा करके यहाँ आए थे तो फिर आज आपको आराम करना चाहिए था, आप ऑफिस क्यों चले गए थे? अभिमन्यु ने कहा, थोड़ा ज़रूरी काम था और वैसे भी हम बिल्कुल भी थके नहीं थे। एक्चुअली हमें इतना ट्रैवल करने की आदत है, काम से दूसरे शहर आना जाना पड़ता है। इप्सिता अभिमन्यु से कुछ देर बात करती रही, क्योंकि उससे बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों बात ही रहे थे कि अभिमन्यु का मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की तो इप्सिता को पता चला कि मासा का फ़ोन आया है और अभिमन्यु उनसे बात करने लगा। अभिमन्यु को अपनी माँ से बात करते देख इप्सिता चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु भी थोड़ी देर मासा से बात करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। जब वो अपने कमरे में जा रहा था तो उसे इप्सिता का कमरा दिखा। उसने इप्सिता के कमरे के पास जाकर कहा, एक बार देखूं इप्सिता सोई है या नहीं। धीमी आवाज में इतना कहकर अभिमन्यु इप्सिता के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही जा रहा था कि उसे अंदर से इप्सिता के पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसके पढ़ने की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बजे इप्सिता ने अपनी किताब बंद की और वो लेटने ही जा रही थी कि अचानक पूरे विला की लाइटिंग गुल हो गई। इप्सिता समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक से पूरे विला की लाइटिंग क्यों गुल हो गई। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाली थी कि एकदम अचानक उसे किसी के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये लाइट को क्या हो गया? जल्दी लाइट ऑन करो, इतना अंधेरा क्यों हो गया यहाँ? लाइट चलाओ। ये आवाज तो अभिमन्यु की है। इप्सिता ने जैसे ही ये तेज आवाज सुनी वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठते हुए बोली। इप्सिता मोबाइल की फ्लैशलाइट से धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। तब तक अभिमन्यु अपने कमरे में था। उसने काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, लाइट ऑन करो, कोई है यहाँ पर? शांता काकी, रघु, विनय, कोई लाइट ऑन करो। अभिमन्यु अंधेरे में काफी घबरा गया और उसने जल्दी जल्दी अपना मोबाइल फोन उठाने के लिए अपना हाथ टेबल पर रखा और टेबल पर रखी सारी चीजें अपने हाथ से गिरा दी। उन सारी चीजों के साथ ही उसका फोन भी जमीन पर गिर गया। उसके पूरे कमरे में अंधेरा था और अंधेरे के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु घबराते हुए बिस्तर से नीचे उतरना चाह रहा था, मगर उसे जमीन तक नजर नहीं आ रही थी। वो अपना पैर जमीन पर नहीं रख पाया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कोई है? जल्दी आओ, कैंडल जलाओ मेरे कमरे में। अभिमन्यु की इतनी तेज आवाज सुनकर इप्सिता जल्दी से उसके कमरे में आई और उसने देखा अभिमन्यु काफी घबरा रहा था। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उसके कमरे में की, अभिमन्यु दरवाजे की ओर देखने लगा जहां से रोशनी अंदर आ रही थी। इप्सिता दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अभिमन्यु, आप ठीक है ना? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना बोलकर इप्सिता अभिमन्यु के बिस्तर के पास गई। अभिमन्यु ने जल्दी से इप्सिता का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इप्सिता ने फ्लैश वैसे ही ऑन करके वहां बिस्तर पर रख दिया और वो अभिमन्यु के बगल में बैठते हुए बोली, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? सिर्फ लाइट ही तो गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, शांत हो जाइए। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुन नहीं रहा था और उसी तरह से चिल्लाता जा रहा था, शांता काकी जल्दी से लाइट चलाइए। इप्सिता ने अभिमन्यु की पीठ पर हाथ फेर कर उसे शांत करवाते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट ही तो गई है, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? आराम से रहिए। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। इप्सिता ने फ्लैश ऑन करके मोबाइल वही बिस्तर पर रख दिया था जिससे सामने लगे शीशे में उस फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ रही थी और अभिमन्यु को इप्सिता का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इप्सिता ने जब उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो अभिमन्यु को चुप कराने के लिए थोड़ा डांटते हुए सख्त लहजे में बोली, अभिमन्यु हमारी तरफ देखिए और शांत हो जाइए, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। इप्सिता ने जब ये बात थोड़ी तेज आवाज में कही तो अभिमन्यु थोड़ा शांत हुआ और बहुत ही मासूमियत से इप्सिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्सिता जो अभिमन्यु को शांत कर रही थी उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे शांत करवाते हुए उसने भी अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। इप्सिता का चेहरा देखकर अभिमन्यु जो अभी तक चिल्ला रहा था वो थोड़ा शांत हो गया। इप्सिता ने टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स की ओर हाथ बढ़ाया और उसमें से टिश्यू पेपर निकालकर अभिमन्यु के माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली, इतना क्यों चिल्ला रहे है आप अभिमन्यु, आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी, इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, विला की लाइट वापस आ गई और उसके पूरे कमरे में भी तेज रोशनी हो गई। कमरे में रोशनी होते ही अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर देखकर गहरी सांस ली। वो देख रहा था कि इप्सिता किस तरह उसके चेहरे पर आए पसीने को पोंछ रही है और वो बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इप्सिता ने अभिमन्यु के चेहरे पर आए पसीने को पूरी तरह से पोंछ दिया और वो भी अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अभिमन्यु उसकी बात और उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए इप्सिता ने उसे शांत रहने के लिए थोड़ा समय दिया। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। अभिमन्यु अभी भी इप्सिता को एकटक देख रहा था और खुद को शांत रखने के लिए गहरी गहरी सांस ले रहा था। इप्सिता बिल्कुल चुप हो गई और जब अभिमन्यु ने अपनी नजर अपने हाथ पर डाली तो उसने देखा कि उसने इप्सिता का हाथ पूरी ताकत से पकड़ रखा था और इप्सिता ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे सहज करने के लिए अपने हाथों से उसके हाथ पर हल्के हल्के हाथ फेर रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु थोड़ा सा इप्सिता की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि शायद पहली बार ही किसी ने उसे इस तरह से शांत किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन इप्सिता के करीब रहने पर उसे सच में अपनी घबराहट कम होती महसूस हुई थी और तभी उसका चिल्लाना भी बंद हुआ था।
कमरे की लाइट वापस आने के कुछ देर बाद शांता भागते हुए उसके कमरे में आई और उसने वहां आते ही पूछा, कुंवरसा आप ठीक है ना? जैसे ही शांता वहां आई उसे देखकर अभिमन्यु ने तुरंत इप्सिता का हाथ छोड़ दिया और इप्सिता भी अपना हाथ पीछे करते हुए बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता के पीछे होते ही अभिमन्यु अचानक गुस्से से बिल्कुल सीरियस होते हुए बोला, शांता काकी हमारे साथ नीचे चलिए। अभिमन्यु को इतने गुस्से में देखकर इप्सिता को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपने मन में कहा, ये अभिमन्यु को क्या हो गया है, अचानक ही वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? इप्सिता ने अपने आप से सवाल किया और अभिमन्यु बहुत ही तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया और शांता काकी भी लगभग भागते हुए उसके पीछे गई। उन दोनों के कमरे से चले जाने के बाद इप्सिता ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर उसने बिस्तर पर रखा हुआ अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, उसकी फ्लैशलाइट बंद की और वो भी अभिमन्यु के पीछे पीछे उसके कमरे से बाहर निकल गई। क्रमशः